तुइलरी के दरबार में मिस्टर सिलर्टन जैक्सन ने याद करती हुई मुस्कान के साथ कहा, ऐसी बातें खुलेआम बर्दाश्त की जाती थीं। जगह थी मैडिसन एवेन्यू पर वान डेर लुइडेन का अखरोट मढ़ा भोजन कक्ष और शाम थी आर्चर के संग्रहालय जाने के अगले दिन की। वे कुछ दिनों को स्क्वेटर क्लिफ से लौटे थे, जहां बोफर के दिवाले की खबर पर जल्दी चले गए थे। इस कांड से समाज हिला था, इसलिए शहर में उनका दिखना जरूरी माना गया। श्रीमती आर्चर के शब्दों में, ओपेरा में उपस्थित होना और घर के दरवाजे खोलना एक सामाजिक कर्तव्य था। लुइजा, ऐसे समय में हम श्रीमती लेमुएल स्ट्रदर्स जैसे नए नवेले लोगों को ये सोचने नहीं दे सकते कि वे रेजाइना की जगह ले सकते हैं। ऐसे ही मौकों पर नव धनाढ्य घुसकर जगह घेर लेते हैं। वो सर्दी याद है जब श्रीमती स्ट्रदर्स आई थी, चेचक फैली थी और पत्नियां बच्चों के कमरे में रहती जबकि पति चुपके से उनके घर जुटते थे। तुम्हें और हेनरी को ये जगह भरनी होगी। इस तरह वान डेर लुइडेन दंपति अनिच्छा से शहर आए, फर्नीचर के गिलाफ हटाए और दो भोज तथा एक स्वागत समारोह दिया। उस शाम उन्होंने मिस्टर सिलर्टन जैक्सन, आर्चर दंपति और आर्चर की माँ को ओपेरा के लिए बुलाया था। उस मौसम का पहला फाउस्ट था। वान डेर लुइडेन के घर में कुछ भी औपचारिकता नहीं खोता था। मेहमान चार ही थे, फिर भी भोजन ठीक 7 बजे शुरू हुआ, ताकि व्यंजन क्रम से बिना जल्दबाजी परोसे जा सके। आर्चर ने अपनी पत्नी को पिछली शाम से नहीं देखा था। वो सुबह जल्दी दफ्तर गया था, इकट्ठे काम में डूबा हुआ। और दोपहर में एक साझेदार ने अचानक उसका समय ले लिया। जब वो घर पहुंचा, मेयर पहले ही वान डेर लुइडेन के यहाँ जा चुकी थी और गाड़ी लौटा दी थी। तभी उसने स्क्वीटर क्लिफ के गुलनार और चमकते बर्तनों के पार देखा कि पत्नी पीली और थकी लग रही है, पर उसकी आंखें अतिरंजित स्फूर्ति से चमक रही थीं। जिस विषय ने जैक्सन को उनकी प्रिय उपमा तक पहुंचाया, वो आर्चर के अनुसार जानबूझकर मेजबान महिला ने छेड़ा था। बोफर का दिवाला और श्रीमती बोफर का बाद का बर्ताव अब भी बैठकों के नीतिवादियों का विषय था। भरपूर निंदा के बाद श्रीमती वान डेर लुइडेन मे की ओर मुड़ी। मे, जो मैंने सुना वो सच है। किसी ने तुम्हारी दादी की गाड़ी श्रीमती बोफर के दरवाजे पर देखी है। ध्यान देने लायक था कि वे अब उस स्त्री को नाम से नहीं पुकारती। मे का चेहरा लाल हो गया और श्रीमती आर्चर ने फौरन बीच में कहा, अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे यकीन है कि श्रीमती मैनसन मिंगोट को इसकी खबर नहीं होगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? श्रीमती वान डेर लुइडेन ने पति की ओर देखते हुए आह भरी। शायद काउंटेस ओलेंस्का का अच्छा दिल उन्हें श्रीमती बोफर के पास ले गया हो, मिस्टर वान डेर लुइडेन ने कहा, या अजीब लोगों का उनका शौक, श्रीमती आर्चर ने उदासीन स्वर में जोड़ा, बनावटी मासूमियत से बेटे को देखते हुए। काउंटेस के बारे में ऐसा सोचना दुखद है, श्रीमती वान डेर लुइडेन ने कहा, और श्रीमती आर्चर ने धीरे से कहा, हाँ, और आपने उन्हें 2 बार स्क्वीटर क्लिफ बुलाया था। तभी मिस्टर सिल्टन जैक्सन को अपना अफसर दिखा। तुइलरी के दरबार में सबकी उत्सुक निगाहें उन पर टिकी तो वे बोले, कुछ मामलों में मानदंड बहुत ढीले थे। कोई पूछ बैठे कि मोरनी का पैसा कहां से आता था या दरबार की सुंदरियों के कर्ज कौन चुकाता था। प्रिय सिलर्टन, आप ये तो नहीं कह रहे कि हम ऐसे मानदंड अपनाएं? श्रीमती आर्चर ने कहा। कभी नहीं, मिस्टर जैक्सन ने शांति से कहा, मैं बस कहता हूं कि विदेश की परवरिश ने शायद काउंटेस को कम नुक्ताचीन बना दिया हो। आह, दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने आह भरी। पर दादी की गाड़ी एक दिवालिये के दरवाजे पर छोड़ देना, मिस्टर वान डेर लुइडेन ने आपत्ति की। आर्चर को 23वीं स्ट्रीट के घर भेजी गुलनार की टोकरियां याद आईं और उसने भांपा कि मेजबान उन्हें नाराजगी से याद कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती रही कि वे हर चीज अलग नजर से देखती हैं, श्रीमती आर्चर ने कहा। मे के माथे पर लाली आ गई। उसने पति की ओर देखा और अचानक बोली, मुझे यकीन है एलेन ने ये सिर्फ भल मनसाहत से किया। लापरवाह लोग अक्सर भले होते हैं, श्रीमती आर्चर ने ऐसे स्वर में कहा मानो ये कोई सफाई ना हो। फिर श्रीमती वान डेर लुइडेन बुदबुदाई, काश किसी से सलाह ली होती, वे कभी नहीं लेती। श्रीमती आर्चर ने हामी भरी। तभी मिस्टर वान डेर लुइडेन ने पत्नी को देखा और उन्होंने श्रीमती आर्चर की ओर सिर हिलाया। तीनों की लंबी पोशाकें दरवाजे से ओझल हुई और पुरुषों ने सिगार निकाले। ओपेरा की शामों में वान डेर लुइडेन छोटे सिगार देते थे, पर इतने उम्दा कि मेहमान उनकी कड़ी समय निष्ठा पर अफसोस करते। पहला अंक खत्म होने पर आर्चर दल से हटकर क्लब बॉक्स के पीछे चला गया। वहां उसने चीवर्स, मिंगोट और रशवर्थ के कंधों के ऊपर से वही दृश्य देखा जो उसने 2 साल पहले एलन ओलेंस्का से पहली मुलाकात की रात देखा था। उसे आधी उम्मीद थी कि वे फिर बूढ़ी श्रीमती मिंगोट के बॉक्स में दिखेंगी, पर बॉक्स खाली था। वो निश्चल खड़ा उधर देखता रहा तब तक
जब तक मैडम नीलसन की निर्मल सोप्रानो एम मामा नॉन एम मामा में फूट नहीं पड़ी और उसे होश में नहीं ले आई। उसने नजर मंच की ओर घुमाई। वहां जाने पहचाने विशाल गुलाबों के बीच वही सुनहरे बालों वाली शिकार उसी छोटे सांवले बहकाने वाले के आगे झुक रही थी।
उसकी आंखें मंच से दर्शक दीर्घा की ओर गईं। मैं 2 बुजुर्ग महिलाओं के बीच बैठी थी, ठीक उस रात की तरह जब वो लवेल मिंगोट और नई आई विदेशी चचेरी बहन के बीच बैठी थी और आर्चर ने एलन को पहली बार देखा था। उस रात की तरह वो पूरी सफेद पोशाक में थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो क्या पहने हैं, जब तक शादी की पोशाक का नीलापन लिए साटन और पुरानी लेस न पहचान ली। पुराने न्यूयॉर्क में रिवाज था कि दुल्हन पहले या दूसरे वर्ष ये महंगी पोशाक फिर पहने। आर्चर की माँ अपनी पोशाक रेशमी कागज में लपेटे थी इस उम्मीद में कि जेनी पहनेगी, पर बेचारी जेनी उस उम्र के पास थी जहाँ मोती सलेटी पॉपलिन ज्यादा उपयुक्त होता। यूरोप से लौटने के बाद मई ने वो पोशाक शायद ही पहनी थी, इसलिए उसे इस रूप में देखकर आर्चर चौंका और अनायास उसकी तुलना उस लड़की से करने लगा
जिसे उसने सगाई की पूर्व संध्या पर सुख से निहारा था। मई की कमर कुछ भर गई थी जैसा उसकी देवी जैसी काया ने जता दिया था, पर वही सीधी जीवंत मुद्रा और चेहरे की वही बच्चों जैसी पारदर्शिता कायम थी। हाल की हल्की सुस्ती न होती तो वो ठीक वही लड़की होती जो सगाई की रात कुमुदिनी के गुच्छे से खेल रही थी। इस बात ने उसकी करुणा और बढ़ा दी। ऐसी मासूमियत उसे उतना ही छूती थी जितना भरोसे से पकड़ता किसी बच्चे का हाथ। फिर उसे उस उदासीन शांति के नीचे छिपी भावुक उदारता याद आई। उसे वो समझ भरी नजर याद आई जब उसने बोफर के नृत्य में सगाई की घोषणा चाही थी और मिशन के बाग में उसकी आवाज फिर सुनाई दी। मैं किसी के साथ अन्याय पर अपनी खुशी नहीं बना सकती, और उस पर एक बेकाबू इच्छा छा गई उसे सच बता देने की, उसकी उदारता के हवाले हो जाने की और वो आजादी मांगने की जिसे उसने खुद कभी ठुकराया था।
न्यूलैंड आर्चर एक शांत और संयमी नौजवान था। एक सैकड़े समाज के अनुशासन के आगे झुकना लगभग उसकी दूसरी प्रकृति बन गया था। कुछ भड़कीला और नाटकीय करना, ऐसा जिसे मिस्टर वॉन डेर लुइडन नापसंद करे और क्लब बॉक्स भद्दा कहे, उसे बेहद अरुचिकर लगता था। पर अचानक उसे न क्लब बॉक्स का होश रहा, न मिस्टर वॉन डेर लुइडन का, न उन सब चीजों का जो उसे इतने समय से आदत के गुनगुने घेरे में बांधे थी। वो पीछे के अर्धवृत्ताकार गलियारे से गुजरा और श्रीमती वॉन डेर लुइडन के बॉक्स का दरवाजा ऐसे खोला मानो किसी अनजान दुनिया का दरवाजा हो। मैं माँ, मार्गरीट की विजयी आवाज गूंजी और बॉक्स में बैठे लोग आर्चर के अचानक आने से चौंक कर ऊपर देखने लगे। वो पहले ही अपनी दुनिया का एक नियम तोड़ चुका था, किसी एकल गान के दौरान बॉक्स में घुसना वर्जित था। मिस्टर वॉन डेर लुइडन और मिस्टर सिलर्टन जैक्सन के बीच सरक कर वो पत्नी की ओर झुका, मेरा सिर असहनीय दर्द कर रहा है, किसी से मत कहना, मेरे साथ घर चलोगी, उसने फुसफुसाया। मई ने उसे ऐसे देखा मानो समझ गई हो, और आर्चर ने देखा कि उसने उसकी माँ के कान में कुछ कहा और माँ ने सहानुभूति से सिर हिलाया। मई ने श्रीमती वॉन डेर लुइडन से विदा बुदबुदाई और ठीक उसी क्षण उठ खड़ी हुई जब मार्गरीट फाउस्ट की बाहों में गिर रही थी, उसे ओपेरा का लबादा पहनाते हुए।
आर्चर ने देखा कि बुजुर्ग महिलाएं अर्थ भरी मुस्कान का आदान प्रदान कर रही हैं। मैं उसके साथ गाड़ी में चढ़ी और सावधानी से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं सुनकर बुरा लगा, दफ्तर में ज्यादा काम तो नहीं कर रहे? नहीं, वो बात नहीं, खिड़की खोल लूं, उसने उलझन में कहा और अपनी ओर का शीशा नीचे कर दिया। वो बाहर देखता रहा, नजर गुजरते घरों पर टिकी थी। उसे लगा कि बगल में बैठी पत्नी उसे चुपचाप देख रही है। घर के सामने मई की पोशाक का घेर पायदान में उलझा
और वो आर्चर की ओर गिर पड़ी। चोट तो नहीं लगी? उसने बांह से संभालते हुए पूछा। नहीं, पर मेरी बेचारी पोशाक देखो फट गई। उसने कीचड़ लगा घेर उठाते हुए आह भरी। दोनों घर में दाखिल हुए। घर में दिराखती मुस्कान परनोत करनों में लग गई,
जहां रोशनियां लगभग बुझा दी गई थी क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं थी। आर्चर ऊपर गया, बत्ती जलाई और पुस्तकालय की अंगीठी के दोनों ओर के लैंप जलाए। पर्दे खिंचे होने से कमरे में गर्म जाना पहचाना भाव था, जो उसके सीने पर ऐसे लगा जैसे किसी न कहे जा सकने वाले काम की ओर जाते हुए कोई परिचित चेहरा मिल जाए। उसने देखा कि पत्नी पीली है और पूछा कि क्या ब्रांडी लाए। नहीं, उसने एक पल लाल पड़कर उत्तर दिया। पर तुम अभी सो जाओ तो बेहतर नहीं होगा? उसने तब जोड़ा जब आर्चर मेज पर रखी चांदी की डिबिया खोलकर सिगरेट निकाल रहा था। आर्चर ने सिगरेट रख दी और अंगीठी के पास अपनी हमेशा की जगह पर गया। नहीं, सिर इतना नहीं दुख रहा। वो रुका और एक जरूरी बात है जो मुझे अभी कहनी है। वो कुर्सी पर बैठ गई, सिर उठाया और सुनने लगी। हाँ प्रिया, उसने इतनी मृदुता से कहा कि उसका न चौंकना आर्चर को विचलित कर गया। मैं, उसने शुरू किया, कुर्सी से कुछ कदम दूर खड़ा, उसे ऐसे देखते हुए मानो यही दूरी उस कठिन बात को समेटे हो। उसकी आवाज घर की खामोशी में अजनबी गूंजी और उसने दोहराया, मुझे तुमसे कुछ कहना है अपने बारे में। वो निश्चल बैठी रही। वो अब भी पीली थी, पर चेहरे पर एक शांति थी जो किसी गुप्त भीतरी स्थिरता से आती लगती थी। आर्चर ने तय किया कि खुद को दोष देने वाले घिसे पिटे वाक्य नहीं बोलेगा। वो तथ्यों को जैसे के तैसे कहना चाहता था,
बिना बहाने और बिना आत्मदया के। मैडम ओलिंस्का के बारे में उसने कहा और पत्नी ने रोकने के लिए हाथ उठाया। ऐसा करते समय गैस की रोशनी उसकी शादी की अंगूठी पर चमकी। क्या आज रात एलेन की बात करना जरूरी है? उसने हल्की झुंझलाहट से कहा, क्योंकि मुझे ये पहले कह देना चाहिए था। मैं ने उसी शांति से उत्तर दिया, क्या सचमुच जरूरी है प्रिया? मैं जानती हूँ कि कभी कभी मैंने उनके साथ अन्याय किया, शायद हम सब ने किया। तुमने उन्हें हमसे बेहतर समझा, तुम हमेशा उनके प्रति भले रहे, पर अब जब सब खत्म हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? आर्चर ने उसे सूने भाव से देखा। क्या वो अवास्तविकता जिसमें वो कैद था पत्नी तक भी पहुंच गई थी? सब खत्म, तुम्हारा क्या मतलब? उसने मुश्किल से पूछा। मैं उसे उन्हीं पारदर्शी आंखों से देखती रही, यही कि वे जल्द ही यूरोप लौट रही हैं। दादी इसे मंजूर करती हैं और समझती है। उन्होंने सब इंतजाम कर दिया है ताकि वे पति से स्वतंत्र रह सके। वो रुकी और आर्चर ने खुद को संभालने के लिए अंगीठी की मुडेर का किनारा ऐंठ कर पकड़ लिया और उलझे विचारों को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा, उसने पत्नी की शांत आवाज को आगे कहते सुना, कि तुम पूरी शाम दफ्तर में इसी वजह से रुके रहे। मुझे बताया गया था कि आज सुबह सब तय हो चुका है। उसने नजर बचाते हुए सिर झुका लिया और चेहरे पर एक क्षणिक लाली दौड़ गई।
उसे समझ आया कि उसकी नजर पत्नी के लिए कितनी असह्य है। वो मुड़ा और कोहनी अंगीठी की मुंडेर पर टिकाकर चेहरा छिपा लिया। कानों में कुछ जोर से गूंज रहा था और वो तय नहीं कर पा रहा था कि ये उसकी नसों में खून की धड़कन है या अंगीठी पर रखी घड़ी की टिक टिक। मैं निश्चल चुपचाप बैठी रही। घड़ी ने धीरे धीरे 5 मिनट गिने। अंगीठी का एक कोयला आगे गिरा और जब उसने पत्नी को उसे भीतर धकेलने के लिए उठते सुना तो आखिरकार मुड़कर उसका सामना किया। ये असंभव है, वो बोल पड़ा। क्या असंभव है? तुमने अभी जो कहा वो कैसे जाना? कल मैं एलेन से मिली थी। मैंने तुम्हें बताया था कि दादी के यहाँ उनसे भेंट हुई, तभी उन्होंने बताया। नहीं, आज दोपहर उनका पत्र मिला, देखोगे? उसकी आवाज नहीं निकली और मैं कमरे से बाहर गई और लगभग तुरंत लौट आई। मुझे लगा तुम जानते हो, उसने सादगी से कहा। उसने मेज पर एक कागज रखा और आर्चर ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। पत्र में केवल कुछ पंक्तियां थीं। प्रिय मैं, आखिरकार मैंने दादी को समझा दिया कि मेरा आना केवल एक भेंट ही हो सकता था। वे हमेशा की तरह भली और उदार रहीं। अब वे मान चुकी हैं कि यूरोप लौटने पर मुझे अकेले रहना होगा या बेचारी मेडोरा मौसी के साथ, जो जल्द मेरे पास आ जाएंगी। मैं सामान बांधने के लिए जल्दी वॉशिंगटन लौट रही हूँ। अगले हफ्ते निकलूंगी।
मेरे जाने के बाद दादी के साथ बहुत भली रहना, जैसी तुम मेरे साथ हमेशा रही हो।
तुम्हारी एलन। और अगर कोई मित्र मेरा मन बदलवाना चाहे तो उससे कह देना कि ये व्यर्थ होगा।
आर्चर ने वो पत्र 2-3 बार फिर पढ़ा, फिर उसे रख कर वो अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। अपनी ही हंसी ने उसे चौंका दिया। उसे वो रात याद आई जब जेनी ने घबराकर उसे आधी रात में उस तार पर समझ से परे हंसी से कांपते पाया था, जिसमें शादी की तारीख आगे बढ़ाने की खबर थी। उन्होंने ये क्यों लिखा, उसने हंसी मुश्किल से रोकते हुए पूछा। मैंने अटल गंभीरता से उत्तर दिया, शायद इसलिए कि कल हमने बहुत सी बातें की। कौन सी बातें? मैंने स्वीकार किया कि मैंने उनके साथ अन्याय किया, कि मैं समझ न सकी कि यहाँ सब कुछ उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। रिश्तेदारों के बीच भी अजनबियों की तरह अकेली, ऐसे लोगों के बीच जो उनकी स्थिति समझे बिना खुद को फैसला सुनाने का हकदार मानते थे। मैं एक पल रुकी। मैं ये भी जानती थी कि तुम हमेशा उनका सहारा रहे, और मैं उन्हें बताना चाहती थी कि इन सब बातों में तुम और मैं एक ही तरह महसूस करते हैं। वो ठिठकी, मानो उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रही हो, फिर धीरे से जोड़ा, मुझे लगता है वे समझ गईं कि मैं ये क्यों कहना चाहती थी। मुझे लगता है वे सब कुछ समझती हैं। मैं आर्चर के पास आई, उसका ठंडा हाथ लिया और एक पल अपने गाल से लगाया। मेरा सिर भी दुख रहा है। शुभ रात्रि प्रिय, उसने कहा और दरवाजे की ओर मुड़ गई। उसकी फटी और कीचड़ लगी दुल्हन पोशाक कमरा पार करते हुए फर्श पर घिसटती गई।